Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 14, Verse Number 5. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अख्यांते मरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादास् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पत गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे श्राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर नंबर 14, 14वां अध्याय जिसका नाम है थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण। श्लोक संख्या 5। कृपया मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निभत्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निभत्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा निभत्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। शब्दार्थ, भगवान कहते हैं सत्वम रजस्तम इति, इति मना इस प्रकार, सत्व सत्वगुण, रज रजोगुण, तम तमोगुण, इति गुण प्रकृति संभवा, ये तीन गुण हैं जो प्रकृति यानी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये जो भौतिक प्रकृति है उसके अंदर ये तीन गुण हैं और उनका काम क्या है, भगवान कहते हैं निभत्नन्ति महाबाहो, वो बांध देते हैं महाबाहो। हे अर्जुन, वो बांध देते किसको, देहे देहिनम, देहे अर्थात इस शरीर में, देहिनम अर्थात जीव को। वैसे तो देह और देही अलग अलग हैं, उनका यानी कि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि देही जो है वो दिव्य है और ये प्रकृति जो है वो भौतिक है, तो भौतिक प्रकृति और दिव्य जीव का आपस में कोई मिलाप नहीं है, भौतिक प्रकृति से जीव का कुछ भी लेना देना नहीं है, परंतु प्रकृति के अंदर ये जो तीन गुण हैं, वे देह और देही को, देही देही नमः अव्ययम्। तो ये जो देही है वो अव्यय है, नित्य है, अविनाशी है, सनातन है, लेकिन ये प्रकृति के गुण देही को देह से बांध देते हैं। तो यानी कि जो जीव आत्मा है वो गुणों से बंध जाती है। निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनाम अव्ययम्। अनुवाद देखिए, भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये हैं सतो रजो तथा तमो। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में हम जीव की और भौतिक प्रकृति की क्वालिटी से एकदम अलग हैं। जीव दिव्य है, भगवान का अंश है, और ये भौतिक प्रकृति जो है वो विनाश होने वाली है। तो इस जीव को भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि जीव तो भगवान का अंश है, उसका यदि कुछ लेना देना है तो केवल भगवान का, भगवान से है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। लेकिन अभी संसार में जीव आता है तो उसे एक भौतिक शरीर प्राप्त होता है जो प्रकृति की देन है, और क्योंकि उसके अंदर गुण है तो प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर वो कार्य करता है। निबध्नन्ति महाबाहो, ये तीन गुण हैं वो उसको बांध देते हैं, फिर वो विवश होकर उन्हीं के अनुसार कार्य करता है। विवश हो जाता है वो जीव, और वो भौतिक प्रकृति के इन गुणों के इशारे पर नाचने लगता है। क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर मिलता है। अब क्योंकि उसने जैसे कार्य किए हैं तो फिर प्रकृति उन्हें विभिन्न भिन्न भिन्न शरीर प्रदान करती है। जैसे जैसे उनके कार्य होंगे, जैसे जैसे उनके करतूत होंगे, उनके अनुसार उनको दूसरा जन्म मिलता है, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब वो जिस उसको अपने कर्मों के अनुसार जैसा जैसा जन्म मिला, जैसा जैसा जिस्म मिला है, शरीर मिला है, उसी के अनुसार वो प्रेरित होता है कि अभी आपको ऐसे ही कार्य करना है। जैसे श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर बताते हैं कि यदि किसी को बंदर का शरीर मिलता है तो फिर वो बंदर जैसे ही हरकतें करेगा, वो बैठकर तपस्या नहीं करेगा एक जगह पर, वो जाहिर सी बात है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांगें मारता रहेगा। अगर किसी को सुअर जैसा शरीर मिला है तो वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं मल नहीं खाता हूं, मैं भले सुअर हूं लेकिन मैं मनुष्यों की तरह जाऊंगा, रेस्टोरेंट्स में जाकर पिज्जा खाऊंगा या फिर और कुछ इस तरह की वस्तुएं। उसको जैसा शरीर मिला होगा वो उसी स्थिति में अपने उसी कॉन्शियसनेस में कार्य करेगा और उसी के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण बनती है, और फिर उसके अनुसार वो कार्य करता है और फिर उसके सुख दुख का कारण बनता है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि वास्तव में जीव के सुख और दुख का कारण क्या है, प्रकृति के तीन गुण, जिनके कारण जीव विवश हो जाता है, बंध जाता है, और वो ऐसे कार्य करता है कि उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। और भगवान ने कहा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययनम्। वो नित्य अविनाशी देही को देह से बांध देती है। यानी कि भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भगवान यहाँ पर हमें प्रकृति के तीन गुणों के विषय में बताते हैं। वास्तव में भक्तों, ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉम्प्लिकेटेड विषय है। वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो श्रीमद् भगवत गीता का कंक्लूजन यही है कि हम इन तीन गुणों को अच्छी प्रकार से समझें। तीन गुण क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इनको हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि तीन गुण वास्तव में हैं क्या? ये कोई वस्तु है या केवल संकल्पना है? क्या है ये? क्या इसका कोई स्थायी स्वरूप भी है, दिखता है, कुछ वास्तविकता है या नहीं है इसकी? तो वास्तव में ये भगवान की शक्ति है। जैसे भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति है, तो भौतिक प्रकृति के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो इसका अस्तित्व है, यानी कि जो तीन गुण हैं वो हैं, वो किस तरह से हैं, उसको बलदेव विद्याभूषण बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं। जैसे कि शास्त्रों में, स्पेशली भागवत महापुराण के चौथे स्कंध में भी इस भौतिक जगत को शास्त्रों में कैसे बताया गया? स्वप्न के समान, कि भौतिक जगत सपने के समान है। अब सपना सत्य है या मिथ्या है, उस चीज को बलदेव, आप देखो ये भौतिक जगत सपने के समान है, तो ये भौतिक गुण भी तो इस भौतिक जगत नहीं है, तो वो भी सपने के समान होंगे। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि स्वप्न जो है वो सत्य है या मिथ्या है? अगर हम कहें कि सपना मिथ्या है तो फिर पूछा जाएगा कि क्यों, क्यों मिथ्या है सपना? तो हम कारण बताएंगे कि देखो, रात को हम सपना देखते हैं, रात को दिखता है, फिर जब जागते हैं तो सपना समाप्त हो जाता है, मतलब सपना असत्य है, सपना मिथ्या है। तो फिर अगर ये डेफिनेशन है कि सपना क्योंकि समाप्त हो जाता है, अस्थाई है, तो अस्थाई होने के कारण यदि सपना मिथ्या है तो ये जगत भी तो अस्थाई है, है ना? ये जगत भी कुछ समय तक, जब तक हम जीवित हैं, हमें दिखता है, फिर अलुप हो जाता है, मतलब वो भी अस्थाई है ना। इस जगत में कुछ भी नित्य नहीं है, तो ये भी अस्थाई है। तो फिर अगर अस्थाई होना ही मिथ्या होने की डेफिनेशन है, तो जब यदि सपना मिथ्या है अस्थाई होने का कारण, तो ये जगत भी क्योंकि अस्थाई है तो मिथ्या होगा। अगर हम मिथ्या को कारण बनाते हैं कि सपना रात को दिखता है फिर जागने के बाद खत्म हो जाता है, मतलब ये अस्थाई है, और अस्थाई होने के कारण जगत असत्य है, तो मृत्यु के बाद तो ये संसार भी समाप्त हो जाता है ना, हमारे लिए वो नहीं रहता है। तो वास्तव में ये दोनों अस्थाई हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई स्थिति नहीं है, वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये अस्थाई हैं, इसलिए इनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। परंतु जैसे भौतिक जगत सत्य है, वैसे ही स्वप्न भी सत्य है। अगर भौतिक जगत मिथ्या होती तो इसमें हम जो कार्य करते हैं उसका कोई भी रिजल्ट नहीं देना पड़ता। भौतिक जगत सत्य है लेकिन अस्थाई है, तो उसी तरह से स्वप्न भी सत्य है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको बहुत खौफनाक सपने आते हैं ना, कुछ लोग होते हैं उनको बहुत डर लगता है, इवन सोने से भी डर लगता है उनको। तो इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, वो हमारे कर्मों के फल हैं। अब देखो, कुछ कार्य हम करते हैं जो बहुत ही बुरे कर्म होते हैं, उनका फल हमें भुगतना पड़ता है स्थूल भौतिक जगत में स्थूल तत्व से। जैसे अगर हमने कोई बहुत ही बुरा कार्य किया होता है तो हमें इस संसार में ही कोई रोग हो जाता है, या फिर कोई हम जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये स्थूल रूप से हमें उसका फल मिलता है। लेकिन वही उसमें से कुछ छोटे शुल्क कर्म होते हैं, उनका फल हमें सूक्ष्म रूप में मिलता है, स्वप्न में। तो स्वप्न में जो हम देख रहे होते हैं वो भी हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। तो कुछ सपनों में हम देखते हैं कि हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा होता है, लेकिन कुछ सपनों में क्या होता है कि हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन कोई भी सपना हो उसमें मेन बात क्या है कि हम कंट्रोलर नहीं हो रहे होते हैं। सपनों में भी हम चाहते कुछ और होते हैं और कुछ और हो जाता है, हमारी इच्छा पर नहीं होता है। कोई भी सपना हमारी इच्छा से नहीं हो रहा होता है और वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रहा होता है, लेकिन वो सपने में हम कंट्रोलर नहीं होते। इसका मतलब है कोई और उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और वो कौन है? वो है भगवान। जैसे भगवान ने कहा 9.10 में, माया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस संसार ये जो प्रकृति है मेरे ही अध्यक्ष में है, मेरे ही नियंत्रण में है, मैं ही उसको अध्यक्ष कर रहा हूँ। तो इस संसार में, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है, इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, वो भगवान के नियंत्रण से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है जो प्रकृति के ये तीन गुण है वो भी सूक्ष्म शक्तियां हैं। भगवान की ऐसी शक्तियां हैं जो, अभी हम ये सपनों की चर्चा क्यों कर रहे थे, क्वेश्चन क्या था कि ये तीन गुण क्या है ना, हम ये पूछ रहे थे कि तीन गुण क्या है। तो तीन गुण ये सिर्फ सूक्ष्म प्रकार से कार्य करते हैं, ये भगवान की सूक्ष्म शक्तियां हैं जिस प्रकार से भगवान उनके द्वारा कार्य कर। अब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये केवल कल्पना नहीं है, ये वास्तविक सत्य है, परंतु ऐसा सत्य है कि हम उन्हें समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में ये हमारे बंधन का कारण बनती है। भगवान कहते हैं यहाँ पर, निबत नंति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम, इन गुणों के कारण हम बंध जाते हैं। लेकिन वो बंधन दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बंधन कहा जाता है। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा शराब पीने की इच्छा हो रही होती है, तो वो शराब पीने की इच्छा उसे खींच कर लेकर जाती है शराब की बोतल के पास, है ना। वो किसी भी तरीके से वो जाता है, तो वो बंधन दिखता नहीं है हमें, लेकिन फिर भी वो खिंचाव उसको फील हो रहा होता है। इसको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई जबरदस्ती मुझे बुला रहा है। वही बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी, अर्जुन ने पूछा था कि 3.36 में, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम सरति पुरुष अनिच्छन पिवाशेव बलादिव नियोजित, हम अपराध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोई शक्ति हमें खींचकर बलादिव बहुत ही जबरदस्ती हमसे अपराध कराती है। तो वो कौन सी शक्ति है? भगवान ने कहा था काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। ये ऐसा नहीं है कि भगवान ने अभी ही केवल प्रकृति के गुणों के विषय में चर्चा करना स्टार्ट की। भगवान ने भगवद्गीता में शुरू से ही कई बार तीन गुणों के विषय में उल्लेख किया है, दूसरे अध्याय से ही गुणों के विषय में बताना शुरू किया। पर अभी जो भगवान ने चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 22 में बीज वाक्य दिया है, उसमें दो बार गुणों की बात की गई है। तो चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 22 जो है वो बीज श्लोक है, इसको बीज वाक्य कहा जाता है, क्योंकि उसी श्लोक के कारण बाकी आगे के अध्याय जो है वो उत्पन्न हुए। उसमें भगवान ने क्या कहा, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसत योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा, क्योंकि पुरुष जो है इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। अब तीनों गुणों के कारण गुण संगस्त, ये जितनी भी सदसद योनि जन्मसु, जितनी भी योनियों में जीव को जन्म मिलता है उसका कारण क्या है, कारण गुण संगस्त, क्योंकि वो गुणों की संगति करता है, गुणों की संगति के कारण सदसद योनि जन्मसु उसे सारी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। भोंगते प्रकृति जान गुणा, प्रकृति के गुणों का भोग करने का वो प्रयास करता है और गुणों से आसक्त हो जाता है। तो मतलब क्या है कि आत्मा के बंधन में जो गुण है वो ही बहुत खतरनाक भूमिका निभाते हैं। ये जो तीन गुण है, मतलब ये जो गुण है वो ही व्यक्ति के बंधन का कारण बनते हैं। तो बहुत खतरनाक है ये गुण जो हमें बार बार सदसद योनि जन्मसु अलग अलग योनियों में जन्म लेने पर विवश कर देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में इन गुणों के विषय में यहाँ पर भगवान बहुत ही डिटेल से बता रहे हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है, गुणों को समझ लेना इज नॉट इनफ, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता केवल इन तीन गुणों के विषय में बताकर ही समाप्त नहीं करते भगवान कि आपको इन तीनों गुणों यानी इनके विषय में जानना है। भगवान हमें ये बताते हैं कि कैसे इन गुणों से ऊपर उठना है। ये तीनों गुण में अभी भगवान ने क्या कहा है, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा निवत्नति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययः। चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो या तमोगुण हो, वो तीनों आपके देही को देह से बांध देते हैं। अब इनके विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सत्वगुण क्या है? सत्वगुण का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करते हैं सत्वगुण के द्वारा, परंतु समस्या क्या है? ज्ञान जब किसी को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका लक्षण क्या होना चाहिए? उसका लक्षण होना चाहिए कि उसके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। ये ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ही विलक्षण लक्षण है कि उसके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। लेकिन आज के समाज में यदि ज्ञान प्राप्त हो जाता है कोई किसी को तो उसे अहंकार हो जाता है। वो सत्वगुण से ज्ञान तो प्राप्त करता है, लेकिन सत्वगुण के होने के कारण उसके क्या होना चाहिए? Somebody who has knowledge has to be humble। उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। जैसे वृक्ष के अंदर जब बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं तो वृक्ष खड़ा नहीं होता सीधा साधा, उसे झुकना पड़ता है। वही वास्तविकता है कि उसके अंदर कुछ है। उसी तरह से वास्तविक ज्ञान से हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए? विनम्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन इस जगत में ये ज्ञान ही हमें अहंकार से भर देता है। तो सत्वगुण में ज्ञान प्राप्त करना ऐसे है जैसे आप एयरपोर्ट में आ गए। एयरपोर्ट पे तो आ गए आप, अंदर भी आ गए, परंतु एयरपोर्ट में आना ही क्या आपके गंतव्य को पहुंचना है? आप पहुंच गए क्या? उसके एयरपोर्ट के अंदर आकर आपको जब जहाज में बैठेंगे, जहाज उड़ेगा और उसके बाद जब लैंड करेगा तब आप अपने वास्तविक मंजिल तक पहुंचोगे ना। तो ज्ञान प्राप्त करना ऐसे है जैसे कि जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग की आपको रेसिपी पता हो जाए कि आपको क्या करना है। जैसे आप रसगुल्ला बना रहे हो, उसमें आपको पता होना चाहिए दूध इतना डालना है, शक्कर इतनी डालनी है, इतना खोया डालना है, ऐसे ऐसे उसको चलाना है, और चलाने के बाद आपको है ना उसको इतनी देर उसको फ्रीज करना है और फिर खाना है। कुछ भी मतलब जो भी उसकी रेसिपी है वो आपको बता दी जाए, और आप क्या करो उस रेसिपी को बहुत अच्छी तरह से याद करो। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले उस रेसिपी को पढ़ो, लेकिन आपको संतोष नहीं मिलेगा। आप यदि उस रेसिपी से बनी हुई वस्तु या व्यंजन का आनंद लेना चाहते हो तो उस रेसिपी को आपको कुक करना पड़ेगा। तो ज्ञान उस रेसिपी के समान है जिसको हम जब तक कुक नहीं करते हैं, और उसमें क्या कुक करना होता है? अपनी कॉन्शियसनेस को कुक करना पड़ता है, अपनी चेतना को कुक करना पड़ता है, और जब हम उसको कुक करते हैं उसके बाद ही हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्ञान बहुत ही राक्षस लोग के पास भी होता है। यू नो रावणा वॉज लाइक बृहस्पति इन वैदिक नॉलेज। उनको पूरी वैदिक नॉलेज पता थी, ज्ञान था, सत्वगुण में ज्ञान प्राप्त किया था उनको सारा, इवन उनको सारे वैदिक जो श्लोक से मंत्रा से वो सब याद थे, परंतु फिर भी उन पर रजोगुण हावी था। है ना, रजोगुण का क्या मतलब होता है? आसक्ति, इच्छा। रावण के पास ज्ञान तो था परंतु रजोगुण उसके पास, रजोगुण जो है वो उसके सत्वगुण को दबा दिया था। रजोगुण में क्या होता है, जो वस्तु आपके पास है चाहे वो कितनी इम्पोर्टेंट, आपके पास बहुत सारी चीजें हों, परंतु फिर भी जो वस्तु आपके पास नहीं है उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, वो है रजोगुण। आप जो भी चीजें आपके पास हैं उनसे आप कभी भी संतुष्ट नहीं होते। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके पास बहुत ज्यादा टॉयज हो, लेकिन कोई उसको बताए कि एक नया खिलौना है वो ऐसे चलता है, भले उसकी उपेक्षा उसके पास बहुत सारे खिलौने होंगे, लेकिन ना उसने यदि किसी नए खिलौने के विषय में सुना जो उसके पास नहीं है तो बस वो जिद करने लगता है, मुझे ये चाहिए। उसी प्रकार रावण के पास कोई कमी नहीं थी, हजारों रानियां थी उसके पास। इवन मंदोदरी के विषय में कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर थी कि महालक्ष्मी के समान सुंदर थी वो, लेकिन जैसे ही शूर्पणखा ने उसे बताया सीता के विषय में तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे उसको प्राप्त करना है, मुझे मेरे पास है, उससे संतुष्ट नहीं, मुझे एक नई चीज जो मेरे पास नहीं है वो मुझे प्राप्त करनी है। इसे कहते हैं रजोगुण। तो ज्ञान का क्या मतलब होता है? नॉलेज है ना, इंटेलिजेंट, उसको प्राप्त इंटेलिजेंस प्राप्त होनी चाहिए। अब फर्स्ट इंटेलिजेंस क्या है कि आपको कुछ भी नहीं कहा जाए, बस आप अपने खुद से ही समझ जाओ कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा शास्त्र पढ़ के आपको पता चल जाए कि ये नहीं करना है, आप समझ जाओ। लेकिन वो शास्त्र पढ़ा हुआ था, उसको सारी नॉलेज थी, लेकिन वो ये बात नहीं समझा था। उसके बाद दूसरी इंटेलिजेंस, सेकेंड इंटेलिजेंस क्या है? कोई आपको समझाए तो आप समझ जाओ। जैसे रावण को सबने शिक्षा दी, विभीषण ने उन्हें बहुत समझाया, माल्यवान नाना ने उन्हें बहुत कुछ बताया, लेकिन वो फिर भी नहीं समझा। वो ना पढ़ने से समझा, ना समझाने से समझा। और जो थर्ड इंटेलिजेंस क्या है? देख के समझ जाए। जब हनुमान जी पहली बार लंका में आए थे, तो पहली बार लंका में आकर ही उन्होंने पूरी लंका का विध्वंस कर दिया था। तो ये देखा था रावण ने, देखा था कि यदि एक वानर मेरी पूरी लंका को जला देता है, फिर वो सैकड़ों वानर आएंगे, तो फिर क्या हाल होगा मेरा। लेकिन वो देखकर भी नहीं समझ सका, तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? यानी कि सत्वगुण भी जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं अपने जीवन में कि किस प्रकार से उसको अप्लाई करना है, कोई शुद्ध भक्त हमें नहीं सिखाता है, तब तक वो भी हमें बांधता। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? कि वास्तविक ज्ञान जिससे प्राप्त करके हम इन गुणों से नहीं मतलब बंधेंगे, वो भगवान में बताएंगे। अभी हमें 14.26 में भगवान कहते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवतम। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो सगुणान समन्ति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं जो भक्ति में स्थित हो जाता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग कर और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर को पहुंच जाता है। तो फिर भगवान बताते हैं कि यदि आपको इन तीनों गुणों से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भक्ति में स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के ये तीन गुण ही हमें बांधते हैं। जैसे कोई किसी को रस्सी से बांधता है ना, रस्सी इधर से कोई खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो गुणों के द्वारा बंधन होता है। तो फिर हमें इस संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। ये तीन गुणों की रस्सी ही तो है जो हमें संसार में आकर बांधती है, बांध देती है। तो इस संसार में आकर बस एक ही कार्य करना है कि इस रस्सी को काटें। तो इस रस्सी को हम, अब क्योंकि रस्सी में हम सब बंधे हुए हैं, जैसे कोई किसी को रस्सी से बांध देता है, तो उस रस्सी को काटने के लिए हमें ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो उस जो बंधी हुई नहीं हो। क्योंकि हम सब गुणों से बंधे हुए हैं, गुणों के द्वारा बंधन में है, तो फिर ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो गुणों में नहीं हो। तो केवल भगवान की भक्ति है, केवल भगवान निर्गुण है, और भगवान से रिलेटेड जो भगवान की भक्ति है वो ही इन गुणों से बंधी हुई नहीं होती। तो इस अध्याय में भगवान हमें इन प्रकृति के तीन गुणों के विषय में बड़े ही विस्तार से बताएंगे। और भगवान जब भी कोई ज्ञान बताते हैं, उससे पहले उसका महत्व बोलते हैं। जैसे 7.3 में भगवान ने कहा था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है यततामपि सिद्धानां कश्चन नामे। तो मेरी जो भक्ति में जो आता है वो कितना महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि ते हिता यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसको जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानने के लिए बचेगा नहीं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान बताऊंगा। तो भगवान की ये शैली है। फिर भगवान ने कहा 9.1, अर्जुन अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, वो राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म की सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत ही सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान ने बताया कि अभी मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही चीज भगवान श्री कृष्ण ने 10.1 में भगवान ने कहा, भूय एव महाबाहो श्रोमे परमं वच यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। हे महाबाहो अर्जुन, आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान बताने वाला हूँ जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। परंतु इन गुणों के विषय में चर्चा करने से पहले भगवान ने बताया 14.1 में, परम वो यह प्रवेक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो फिर से बता रहा हूँ, पहले भी तुम्हें बताया, ऐसा नहीं ज्ञान के गुणों के बारे में पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन ये ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, जितने भी ज्ञान है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और क्यों? क्योंकि यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मतो में तो गता, कि जितनी भी सिद्धि, जितने भी लोगों ने आज तक सिद्धि प्राप्त की है वो इसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही की है। तो यदि तुम वास्तविक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। भगवान ने कहा, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा धर्म्य मागता सर्गोपिनो बजायन्ते प्रलयेन व्यथंतिते, कि ये ज्ञान अगर तुमको आ गया, इस ज्ञान का आश्रय यदि तुमने ग्रहण कर लिया, भगवान कहते हैं इदं ज्ञानं उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण करो। आश्रय का क्या मतलब होता है? इस ज्ञान के अंडर में आ जाओ। तो यदि भगवान को हमें समझना है तो उसके लिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, टू अंडरस्टैंड कृष्णा स्टैंड अंडर कृष्णा। यदि भगवान को समझना है तो भगवान की शरण में आ जाओ, क्योंकि शास्त्र कहता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न गृहायेदिन्द्रियः सेवान्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव सुफूर्त्यद। यदि ये भगवान को समझना हमारी इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है, यदि हम चेष्टा करते हैं, गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हैं, तो क्या करना है? तो वो भगवान स्वयं हमारे ऊपर स्फूर्त हो जाएंगे। सततम चिंतयन्तो माम, यदि हम सतत भगवान का चिंतन करते रहेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप कर, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान कहते हैं 10.11 में, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन पर विशेष कृपा दिखाते हुए मैं उनके हृदय में एक ऐसा दीप प्रज्वलित कर दूंगा जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा धर्म माम कथा, मेरे जैसा स्वभाव प्राप्त करोगे और जब इस सृष्टि होगी तो तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा और प्रलय के समय तुम्हें विचलित भी नहीं होना पड़ेगा। तो इस अध्याय में भगवान हमें इन तीन गुणों के विषय में बहुत ही डिटेल से बताएंगे। वास्तव में ये तीन गुण क्या हैं? ये सूक्ष्म शक्तियां हैं जो प्रकृति और चेतना, यानी प्रकृति और चेतना और उनका जो आपस में आदान प्रदान है उसको प्रभावित करती हैं। हमारी जो जीव आत्मा है, देही देहिनम अव्ययम, जो देही है वो शरीर के अंदर है और इन गुणों के द्वारा वो प्रभावित होता है। और वो किस प्रकार से प्रभावित होता है इसको हम अगले श्लोकों में भगवान के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।